लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कस्तल गंदोल्फो के मिस्सा में दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कस्तल गंदोल्फो के थॉमस दे विलानोवा पल्ली में युखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए भले समारी के दृष्टांत पर चिंतन किया। संत पापा ने अपने प्रवचन के दौरान सबों का अभिवादन करते हुए कहा कि आप लोगों के संग युखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। रविवार सुसमाचार पर अपने चिंतन व्यक्त करने के पूर्व संत पापा ने कहा कि भले समारी का दृष्टांत यीशु ख्रिस्त के दृष्टांतों में से एक अति सुंदर और प्रभावित करने वाला दृष्टांत है।
Questo racconto continua a sfidarci anche oggi, interpella la nostra vita, scuote la tranquillità delle nostre coscienze addormentate o distratte.
यह दृष्टांत हमें सदैव अपने जीवन के बारे में विचार करने की चुनौती देता है। यह हमारे सुषुप्त या भटकी हुई चेतना को विचलित करता और हमारे लिए एक शालीन विश्वास को चेतावनी देता जो कानून के छिछले पालन से संतुष्ट है, लेकिन ईश्वर के समान दयालु करुणा को अनुभव और उसके अनुरूप कार्य करने में असमर्थ है। संत पापा ने कहा कि यह दृष्टांत करुणा के बारे में है। सुसमाचार की कहानी करुणा के बारे में कहती है जिसमें द्रवित होकर समारी कार्य करता है, लेकिन इसके पहले हम घायल व्यक्ति के संबंध में उन लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में सुनते हैं जो डाकुओं के हाथों में पड़ सड़क के किनारे पड़ा रहा। हम एक याजक और एक लेवी के बारे में सुनते हैं, वे उसे देखते लेकिन वहां से गुजर जाते हैं। वहीं समारी के बारे में सुसमाचार कहता है कि वह उसे देखता और करुणा से भर जाता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, हम दूसरों को कैसे देखते हैं वह अर्थ रखता है, क्योंकि यह हमारे हृदय की बातों को प्रकट करता है। हम देखकर पार हो सकते हैं या देखकर द्रवित होते हुए करुणा से भर सकते हैं। हमारे देखने के तरीके में छिछलापन, विचलन और जल्दबाजी होते हैं। हम देखते हुए भी नहीं देखने का बहाना करते हैं। हम बिना प्रभावित या चुनौती प्राप्त किए देखते हैं और तब हम हृदय की आंखों से देखने को पाते हैं, जो निकटता से देखना, दूसरों से सहानुभूति रखना, उसके अनुभव या बातों में अपने को सहभागी करते हुए स्पर्श होने और चुनौती प्राप्त करना है। यह देखना अपने जीवन का अवलोकन करना और अपने में यह सवाल करना है कि हम दूसरों के संबंध में अपने उत्तरदायित्व को किस भांति जीते हैं। दृष्टांत हमें ईश्वर की निगाहों से देखने के बारे में कहता है, जिससे हम अपने जीवन में दूसरों को और परिस्थितियों को उनकी निगाहों से देखना सीखते हैं जो प्रेम और करुणा से भरे हैं। भला समारी सचमुच में हमारे लिए यीशु एक निशानी दिव्य पुत्र को प्रकट करता है, जिसे उन्होंने हमारी मानवता के लिए इतिहास में भेजा, जिससे वे विशेषकर मानवता को करुणा की निगाहों से देखें और उनके बीच से यूं ही ना गुजरें। सुसमाचार का व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, जहां मानवता की मृत्यु गहराई में उतरती है, जो हमारे समय में भी हमें बुराई के अंधकार, दुख, गरीबी और मृत्यु की पहेली का सामना करने की मांग करती है, फिर भी ईश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है। वे हमारे संग उसी राह में चलना और हमारे बीच में आना चाहते हैं। यीशु भले समारी हमारे घावों की चंगाई और उन पर प्रेम और करुणा का मलहम लगाने आते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने यीशु को ईश्वर की करुणा का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए सदैव उनकी करुणा और दया की याद दिलाई है। करुणा, संत अगुस्टिन हमें याद दिलाते हुए कहते हैं, यीशु भले सामारी की तरह जो हमारी सहायता करने आते हैं, हमारे पड़ोसी के रूप में जाने जाना चाहते हैं। वास्तव में यीशु ख्रिस्त हमें इस बात को अनुभव करने में मदद करते हैं कि ये वे हैं जो अधमरे व्यक्ति की सेवा करते हैं, जो डाकुओं के हाथों में पड़कर मारा पीटा और रास्ते में छोड़ दिया गया। इस भांति हम इस दृष्टांत को समझ सकते हैं कि यह हम में से हर एक के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है। यदि ख्रिस्त हमारे ईश्वर के करुणामय चेहरे को प्रकट करते हैं, तो हमें उन पर विश्वास करना है।
Credere in lui e seguirlo come i suoi discepoli significa lasciarsi trasformare perché anche noi possiamo avere i suoi stessi sentimenti.
इस भांति उनके शिष्य होने का अर्थ है अपने में परिवर्तन लाने देना और उनके मनोभावों को धारण करना। इसका अर्थ है एक वह हृदय होना जो द्रवित होता है, वे आंखें जो दूर नहीं देखती हैं, वे हाथ जो दूसरों की मदद और घावों को आराम पहुंचाती हैं, वे कंधे जो दूसरों की बोझ को उठाने में मदद करती हैं। संत पापा लियो ने कहा कि आज के पहले पाठ में हमने मूसा के शब्दों को सुना। वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को कहते हैं और उनकी ओर हमारी निगाहें उठाना हमारे लिए अपने कार्यों में बढ़ोतरी लाना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को देखना और इस बात की खोज करना है कि ईश्वर के प्रेम का नियम उसमें अंकित है। यदि हम हृदय की गहराई में अनुभव करते कि भले समारी ईश्वर हमें प्रेम करते और हमारी चिंता करते हैं, तो हम भी उसी प्रेम को करुणा में प्रस्तारित करने के योग्य होंगे। एक बार जब हम ख्रिस्त के प्रेम से चंगे किए जाते, तो हम भी उस प्रेम और करुणा के साक्षी विश्व के लिए होंगे। संत पापा ने कहा कि आज हमारे लिए प्रेम की क्रांति की आवश्यकता है। आज उस मार्ग में जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जाता है, उस राह में वे लोग चलते हैं जो पाप में उतरते हैं, दुख और गरीबी के शिकार हैं। वहां बहुत से लोग गिरे हैं जो अपने जीवन की चीजों को खो देते और गर्त में पड़े हैं। उस मार्ग में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन की मुसीबतों से दबे या जीवन में दुखित हैं। उस मार्ग में चलने वाले गिरे हुए हैं। उस मार्ग में चलने वाले लूट, चोरी और अत्याचारी राजनीतिक प्रणालियों एक अर्थव्यवस्था के शिकार हैं, जो उन्हें गरीबी में और युद्धों के लिए विवश करता है, जो उनके सपनों और उनके जीवन को खत्म करता है। हम क्या करें? संत पापा ने कहा, क्या हम देखते और पार होते हैं, या हम दूसरों के लिए अपने हृदयों को खोलते हैं उस समारी की भांति? क्या कभी कभी हम अपने कामों से सिर्फ संतुष्ट हैं, या अपने समुदाय में रहने वालों को अपने पड़ोसी स्वरूप देखते हैं, जो हमारे दल के अंग हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारे देश या धर्म से ताल्लुकात रखते हैं? यीशु सामारी को हमारे लिए प्रस्तुत करते हुए हमारे सोचने के तरीके को बदलते हैं, जो घायल व्यक्ति के लिए एक पड़ोसी की भांति कार्य करता है, वे हमें वैसे ही करने को कहते हैं। सामारी के बारे में संत पापा बेनेडिक्त 16वें के द्वारा लिखित बातों का जिक्र करते हुए संत पापा लियो ने कहा, उसकी जरूरी एकता कहाँ तक जाती है? ना ही वह अनंत जीवन प्राप्ति हेतु कार्य के बारे में पूछता है। उसका दिल टूट गया है यदि सवाल यह होता है, क्या सामारी भी मेरा पड़ोसी है? उस समय के अनुसार उसका सीधा उत्तर हमारे लिए होगा नहीं, लेकिन यीशु सारी बातों को उसके ऊपर लाते हैं। सामारी परदेशी अपने को पड़ोसी बनाता और मुझे इसके बारे में सिखलाता है कि मुझे अपने में एक पड़ोसी बनना है और मैं अपने में एक उत्तर को पाता हूँ। मैं उस व्यक्ति के समान बन गया हूँ जो प्रेम करता है, एक व्यक्ति जिसका हृदय किसी की जरूरतों के कारण हिल गया है। देखे बिना चलना, हमारे जीवन की तीव्र गति को रोकना, दूसरों के जीवन को स्वीकारना, हमारी जरूरतों और परेशानियों के साथ हमारे दिल को छूने के लिए वे कुछ भी हो सकते हैं। यही वह है जो हमें एक दूसरे के लिए पड़ोसी बनाता है, जो सच्ची बिरादरी उत्पन्न करता और दीवारों और बाधाओं को तोड़ता है। प्रेम प्रबल होता है, यह बुराई और मृत्यु से अधिक शक्तिशाली साबित होता है। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा, आइए हम मसीह अच्छे सामरी को देखें। आइए हम आज फिर से उसकी आवाज को सुने, क्योंकि वह हम में से प्रत्येक को कहता है, जाओ और वैसा ही करो।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने एक इतालवी दान कार्यक्रम में भाग लेने वालों को एक वीडियो संदेश भेजा और शांति के लिए एकजुट होने की तात्कालिकता एवं खेल, राजनीति, संगीत आदि के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। 15 जुलाई को प्रकाशित एक वीडियो संदेश में संत पापा ने परम धर्म पीठ के बाल चिकित्सालय बम्बिनो जेसु और इतालवी कारितास द्वारा आयोजित एक चैरिटी मैच के प्रतिभागियों को संबोधित किया। संत पापा ने कहा, हमारी मानवता दांव पर है। शांति की बात करने वाले इस मैच को इसके पक्ष में एक अंक प्राप्त करने दें। संत पापा ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोग बच्चों की आंखों में देखें और उनसे सीखें कि कैसे दूसरों का स्वागत करने का साहस पाएं, कैसे ऐसे पुरुष और महिला बने जो मिलन को बढ़ावा दें, और कैसे विश्वास करने और प्रार्थना करने की शक्ति पाएं कि एक युद्ध विराम आए, घृणा को बढ़ने से रोकने का समय आए। उन्होंने जोर देकर कहा, विभाजन, गिरते बमों और युद्ध के समय में भी एक साथ आना अभी भी संभव है। ऐसा करने के अवसर पैदा करना आवश्यक है। विभाजनों को चुनौती दें और समझें कि सबसे बड़ी चुनौती एकजुट होना है। संत पापा का संदेश इस वर्ष के ला पार्टिता देल कुओरे, दिल का मैच के प्रतिभागियों को संबोधित था, जो एक चैरिटी फुटबॉल मैच और संगीत कार्यक्रम है, जो मंगलवार 15 जुलाई को मध्य इटली के ला अक्विला शहर में आयोजित हुआ। संत पापा ने कहा, इस आयोजन से जुड़े मैच शब्द का अर्थ है मिलना और एक साथ आना। उन्होंने कहा, एक ऐसी बैठक जहां विरोधी भी एक ऐसा मुद्दा खोज लेते हैं जो उन्हें एकजुट करता है, इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो मदद मांगते हैं, जो संघर्षरत क्षेत्रों से इटली आते हैं और जिन्हें स्वागत परियोजना द्वारा समर्थन दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, इस प्रकार ला पार्टिता देल कुओरे, मैच और दिल दो ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनका एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा, यह जीवन के लिए, इलाज के लिए धन जुटाना है, विनाश और मृत्यु के लिए नहीं। संत पापा ने एकता को बढ़ावा देने और विभाजन को दूर करने में खेल, संगीत, टेलीविजन और राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा,
खेल जब अभ्यास करने वाले और उत्साह दिखाने वाले दोनों ही खेलों को अच्छी तरह से जीते हैं, तो उनमें एक कैफियत होती है कि वे टकराव को मुलाकात में, विभाजन को समावेश में और एकांत को समुदाय में बदल देते हैं। उधर अपने इतिहास में पहली बार कैथोलिक कलीसिया पवित्र वर्ष के भीतर एक जयंती समारोह मनाएगी, जो विशेष रूप से डिजिटल मिशनरियों और कैथोलिक प्रभावशाली लोगों को समर्पित होगा और डिजिटल वातावरण को मिशन के एक सच्चे क्षेत्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देगा। यह सभा 28 और 29 जुलाई 2025 को रोम में युवा जयंती के आरंभिक दिनों के साथ होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने वाले कई युवा दोनों समारोहों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। वाटिकन संचार विभाग द्वारा आयोजित यह अभूतपूर्व पहल दुनिया भर के लगभग 1000 डिजिटल मिशनरियों को एक साथ लाएगी, जिसमें लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और स्पेन का मजबूत प्रतिनिधित्व होगा। ये प्रचारक सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म, ब्लॉग और एप्स के माध्यम से सुसमाचार के आनंद का प्रचार करेंगे और डिजिटल महाद्वीप में एक रचनात्मक, सुलभ और सक्रिय ख्रीस्तीय साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। उधर यरूशलेम के लैटिन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्रांति धर्माध्यक्ष विदेशी राजनयिकों के साथ वेस्ट बैंक पर स्थित अंतिम ख्रीस्तीय गांव का दौरा कर रहे हैं, जिस पर हाल के हफ्तों में बसने वालों ने लगातार हमला किया है। सोमवार को यरूशलेम की कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मगुरुओं ने रामल्ला के पूर्व में स्थित तायबेह गांव का दौरा किया, जिस पर हाल ही में इजरायली प्रवासियों ने भारी हमला किया है। कलीसिया के अधिकारियों के साथ कई वाणिज्य दूत और राजनयिक भी थे, इनमें फ्रांस, बेल्जियम और इटली के प्रतिनिधि भी शामिल थे। हाल के हफ्तों में बसने वालों द्वारा गायों के झुंडों को जानबूझकर तबाएह के पास सूखी पहाड़ी पर लाया गया है, जहां जैतून के पेड़ उगते हैं, जिसे मालिकों को अपनी जमीन तक पहुंचने और खेती करने से रोका जा रहा है और गाँव की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है, जो आंशिक रूप से जैतून के तेल के उत्पादन पर आधारित है। उधर वाटिकन राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर, जो 13 से 19 जुलाई तक भारत की यात्रा पर हैं, मंगलवार 15 जुलाई को त्रिवेंद्रम स्थित संत मरिया मलंकरा मेजर सेमिनरी में मलंकरा धर्मशास्त्र संस्थान की शिलान्यास के अवसर पर संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज हम संत मरिया मलंकरा मेजर सेमिनरी में एकता, विश्वास और कृतज्ञता की भावना से एकत्रित हुए हैं। आज का दिन जो कलीसिया के इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा, क्योंकि हम मलंकरा धर्मशास्त्र संस्थान की आधारशिला रख रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने उन्हें मलंकरा कलीसिया की समृद्ध विरासत और मार्ग प्रशस्त करने वाले दूरदर्शी नेताओं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान जो उन्हें विरासत में मिली है, उसका कुशल प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। इस आधारशिला का रखा जाना एक प्रतीकात्मक संकेत से कहीं अधिक है। यह भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की घोषणा है। मलंकरा धर्मशास्त्र संस्थान एक ऐसा स्थान होगा जहां आस्था और बुद्धि का सामंजस्य स्थापित होगा। वास्तव में गहन चिंतन, गहन विद्वता और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक विकास के लिए एक आश्रय स्थल। यहाँ युवा मस्तिष्क को न केवल विद्वानों और पुरोहितों के रूप में, बल्कि करुणामय नेताओं, सेतु निर्माताओं और मानवता के सेवकों के रूप में भी तैयार किया जाएगा। हम यह आधारशिला रखते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आज हम जो आरंभ कर रहे हैं, वह फूलेगा, फलेगा तथा कलीसिया और विश्व में प्रकाश और जीवन लाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।